तस्वीर सूरत कलम मक्की सूरत है, अल्फाज कलेमात की तादाद 306, हुरूफ 1295, आयात 52, रुकू 2 हैं। सूरत कलम का नाम इसकी पहली ही आयत से लिया गया है, नून वल कलमी, नून वल कलमी, और इसके दो नाम हैं। इसका एक नाम नून और दूसरा अल कलम भी है। इस सूरत का मौजू और मजमून, इसमें तीन अहम मजामीन बयान हुए हैं। नंबर एक, मुखालिफीन के इतराजात का जवाब, और नंबर दो, उनको तंबीह और नसीहत। नंबर तीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर और इस्तकामत की तलकीन। आयत नंबर एक से लेकर 16 तक, इसमें एक तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की, किरदार की गवाही दी गई है, और दूसरी तरफ मुखालिफीन में से एक नुमाया शख्स का किरदार पेश किया गया है, जिसे अहले मक्का भी खूब जानते थे। तो किरदार पेश करने का मकसद ये है कि इस तरह का किरदार जो है वो अहले मक्का में भी पाया जाता है, और हर दौर में ऐसा किरदार जो है वो अहम रहा है, और इस किरदार को सामने रखने का मकसद ये है कि ऐसा किरदार जो है ये अल्लाह का नापसंदीदा किरदार है। तो एक तरफ अहले मक्का के इतराजात, शुबहात, उनका जवाब दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीजा इखलाक जो हैं, उनको सबके सामने नमूना बनाकर पेश किया गया है। नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून कसम है कलम की और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। नून हरूफ मुकत्तआत में से है और इसके मानी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वल कलमी, कलम जो है किसे कहते हैं? आप सबके हाथ में कलम है, जिसे लिखा जाता है। कलम जिससे आप लिखती हैं, और आप देख लीजिए कि यहां पे अल्लाह ताला ने वो जो है कसम के तौर पर इसको रखा है, तो कलम की कसम खाई है, कसम है कलम की। अब ये के कसम खाना उसकी अहमियत जो है उसकी वजाहत करता है। नून कसम है कलम की, वमा और जो, वमा, वमा जो है और जो, तो क्या चीज है जो कलम से लिखी जा रही है, वमा, वो क्या है? मां जो है मुफस्सरीन कहते हैं इससे मुराद है अमालनामे, इससे मुराद है तकदीर, क्योंकि आपको पता ही है ना कि तकदीर जो है वो कलम से लिखी गई, और इससे मुराद है कुरान, कुरान भी तो कलम ही से लिखा गया ना, और इससे मुराद है तारीख, कि उस जमाने में जो तारीख लिखते थे सहाबा, और हर दौर में जो तारीख लिखी गई, तो यहां पर जो है कलम की कसम खाई गई। यस्तुरून, यस्तुरून के क्या मानी है? सतर से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सतर का लफ्ज क्यों आया, कतबा क्यों नहीं आ गया? कतबा भी तो आ सकता था ना, कतबा के मानी क्या होते हैं? लिखना। तो असल में सतर के मानी होते हैं लकीर, कितार, तहरीर की सतर, सतर बंदी करना, गोया के सीधी लाइनों में लिखना। तो जिस बात पर कलम की कसम खाई गई है, और वमा यस्तुरून, और वो जो लिखने वाले लिखते हैं, तो अब यस्तुरून वो लिखते हैं, वो जो लाइनें बना बना कर लिखते हैं, तो वो लिखने वाले कौन हैं? एक इसके मानी है फरिश्ते, क्योंकि फरिश्ते जो हैं जैसे लोहे महफूज में जो लिखा गया, और वैसे भी फरिश्ते अल्लाह ताला के अहकामात को तहरीर करते हैं। नंबर दो, किरामन कातिबीन, इंसान के नामा माल को लिखते रहते हैं ना। नंबर तीन, कुरान के लिखने वाले फरिश्ते भी हो सकते हैं जिन्होंने कुरान को लिखा। और जो है एक इससे मुराद है कि यस्तुरून, और जो वो लिखते हैं तो लिखने वाले से मुराद फरिश्ते हैं। दूसरे इसके मानी बयान किए जाते हैं कि इससे मुराद है खुद कलम। कलम क्यों? कलम जो है वो बगैर फरिश्तों के भी लिखता चला जाता है, बस अल्लाह का ऑर्डर है कुन फयकुन, तो वो लिखता चला जाता है। तो बाज कहते हैं कि इससे मुराद कलम भी हो सकता है। और फिर एक इसके मानी है कि लिखने वाले जो है मौर्रखीन, सहाबाए कराम या सहाबाए कातिबीने वही, जो वही लिखा करते थे, वो भी इससे मुराद हो सकते हैं। तो सारी बात का खुलासा ये है कि कसम है कलम की, और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। तो ज्यादातर राय क्या आई कि कसम है उस कलम की, और जो लिखने वाले लिख रहे हैं तो कलम है कातबी ने वही का, और लिखा जा रहा है कुरान को, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को मुतारिफ फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और उसके साथ ही आपने कुरान को पेश किया, तो अहले मक्का जो थे वो आपको झुठलाने लगे, वो आपको दीवाना कहने लगे, और उन्होंने जो है आपकी दीवानगी पर जो तोहमत लगाई, तो सबसे बड़ी तोहमत उनके नजदीक क्या थी रसूल अल्लाह पर? वो कुरान ही था। वो कुरान जो थे उसको रद्द करते थे और कहते थे कि ये दीवानगी की बात है, आप दीवाने हो गए हैं। तो यहां पर अल्लाह ताला ने जो कसम खाकर कहा, नून वल कलम इमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं, तो यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, इन्होंने जो कुरान पेश किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खा के ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे ही किसी दीवाने की भड़ है और ऐसे ही दीवाने की बात है, दीवानगी की, कि आपने उठे और कुरान को पेश कर दिया, बल्कि जो है कलम की कसम खाई कि इसको बड़े एहतमाम से जो है वो कुरान मजीद को जो है वो महफूज किया गया है, इसको लिखा गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके लिखने वाले भी बड़े खास हैं। तो मुनकरीन नबूवत को ये बात बताई जा रही है कि आप जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं, और आपके पास जो कुरान नाजिल हुआ है तो ये कुरान भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, इसको बड़े तमाम से लिखने वालों ने लिखा है, और जो है वो नाजिल करने वालों ने जो है वो नाजिल किया है। फिर आप ये बात भी याद रखें कि कलम के बारे में हमें क्या बात पता चलती है, कि कलम के बारे में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने जब चीजों को पैदा किया तो सबसे पहले क्या पैदा किया? कलम पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने कलम जो है इसको बहुत एहतमाम से जो है वो पैदा किया है, कि सबसे पहले जो है वो कलम को पैदा किया, और फिर फरमाया कि लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? फरमाया वो सब चीजें लिख दे जो मुकद्दर हो चुके हैं, लिहाजा कलम ने वो सब कुछ लिख दिया जो हमेशा आइंदा तक होने वाला है। फिर आप देखिए कि यहां पर हमें ये बात भी पता चलती है कि कलम जो है, कलम ही से इन की इब्तदा होती है ना। इकरा बिस्मे रब्बिक अल्लज़ी खलक, तो पहली वही भी जो थी वो क्या थी? तालीम ही थी ना। तो तालीम जो है ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो पहली जो आयत है, फिर इसका निचोड़ हमारे सामने क्या आता है ممکن ہے کہ قلم نے خود ہی لکھ دیا جو اللہ نے چاہا. نمبر دو, لکھنے والے اللہ کے فرشتے ہیں, اور قلم اور فرشتے جو ہیں ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوہے محفوظ میں جو قرآن محفوظ ہے قلم کے ذریعے فرشتے اس کو نقل کرتے ہیں. اور پھر یہ معنی بھی ہیں کہ صحابہ کرام جو کہ قرآن کی وحی کو قلم سے لکھتے جاتے تھے, اور پھر اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ مورخین کی قسم جو قلم کے ساتھ بڑے بڑے نیک لوگوں کی زندگی کی داستان جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں. اور ولید بن عبادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھ, چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ابد تک ہونے والا تھا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ مجنو. تو آیت نمبر دو میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے, ما انت بنعمت ربک بمجنون, نہیں ہے آپ بنعمتی, نعمت کے ساتھ. نعمت کا لفظ کیا ہے؟ اسم جنس ہے. ربک اپنے رب کی, اپنے رب کے فضل سے, اپنے رب کی نعمت سے نہیں ہے آپ بمجنون, دیوانے. اور یہاں پہ جو ہے وہ کفار مکہ کے اعتراض کو رد کیا گیا ہے. سورۃ الحجر آیت 6 میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ اہل مکہ آپ کو مجنون کہا کرتے تھے, یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون. وہ کہتے تھے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ذکر, بے شک آپ تو مجنون ہیں. البتہ آپ سوچیں کتنا بڑا الزام جو ہے اہل مکہ آپ پر لگایا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے, اور لوگ جو تھے آپ کو کہتے تھے کہ آپ جو ہیں یہ مجنو ہیں. ذرا آپ تصور تو کریں کہ آپ اللہ کے دین کا کام کریں اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پاگل ہیں, تو کیسا لگے گا؟ اور کبھی ویسے کسی نے ایسا کہا بھی نہیں, اور سامنے کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مجنون کہنا, اس کا الزام لگانا. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو کیسے برداشت کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اتنے صبر سے برداشت کیا کہ کوئی ان کو جواب نہیں دیتے تھے کہ میں مجنون نہیں ہوں. آپ نے اتنی آیات پڑھی, اتنی احادیث پڑھی, آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا, آپ نے کوئی ایسی حدیث پڑھی ہو جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اس کا جواب در جواب یہ کہا ہو کہ نہیں نہیں میں مجنون نہیں ہوں؟ تو آپ نے تو کچھ نہیں کہا, آپ صبر سے برداشت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. تو گویا کہ یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت اور کتاب. تو اللہ کا وہ خاص فضل کیا ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا, اللہ کا خاص فضل کیا ہے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا. تو یہ جو فضل اللہ نے آپ کو دیا اور آپ کو چن لیا, تو نبوت اس بات پر گواہ ہے, کتاب قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے, ربی کا آپ کے رب کی طرف سے, آپ کے رب کے فضل پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے کسی مجنون کا انتخاب نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کتابوں کے نزول کے لیے کسی دیوانے شخص کو منتخب نہیں کرتے. تو کہا کہ اپنے رب کے فضل سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا, آپ پر کتاب کو نازل کیا, اور آپ مجنون نہیں ہیں. مجنون کا روٹ کیا ہے ذرا جان سے؟ جیم نون نون. اور جن جو ہے وہ بھی پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں, اور یہ جو جنون کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ بھی پوشیدہ ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات دورہ سا بھی پڑ جاتا ہے. تو بھی مجنون کہ آپ جو ہے وہ مجنون نہیں ہیں. اور یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اعتراض اہل مکہ کر رہے ہیں, شبہات اہل مکہ پیدا کر رہے ہیں, دیوانہ اہل مکہ کہہ رہے ہیں, اور جواب اللہ دے رہا ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. رسول اللہ کا صبر تو دیکھیں کہ لوگ آپ پر باتیں بنا رہے ہیں, اور اللہ تعالی جو ہے आपका जो आप पर वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं अल्लाह उसका जवाब दे रहा है। तो इससे अमल का क्या असूल निकलता है कि सबर करना चाहिए। दाई की जिंदगी सबर की जिंदगी होती है। खुद ही हालात पराइन अल्लाह ऐसे पैदा कर देता है कि दाई पर लगने वाले इल्जाम खुद ही छट जाते हैं। वइन्ना लकल अजरन गैर ममनून, वइन्ना और बेशक लका आपके लिए, काफ की जमीर किसके लिए आई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि बेशक तेरे लिए ला अजरन, अजर के मानी क्या है कि सिला, अजर आपके लिए सिला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको सिला क्यों दिया जाएगा, किस चीज का सिला है जिसका अल्लाह ताला ने यहां पे जिक्र किया है कि आपके लिए सिला है। तो ये सिला जो है ये तबलीग करने पर और तबलीग करते हुए जो लोगों का आपको दीवाना, मजनू, काहिन, शायर और न जाने क्या क्या कहना और पत्थर मारना और मक्का से हिजरत पर मजबूर कर देना और मदीना की तरफ आपका जाना, आपका ताइफ का सफर करना, और आपको देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे और आपको देखकर लोग अपनी कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे। तो ये सारे जो आप हालात से गुजरे और उस पर आपने जो सब्र किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए अलबत्ता इतना अजर है, गैरा ममनून, गैरा नहीं, ममनून। ममनून जो है इसके मानी क्या है, ममनून के मन के मानी होते हैं काट देना, कता कर देना, तो एहसान के मानी भी आते हैं और मकतू के मानी में भी आता है। तो आपको जो अजर दिया जाने वाला है वो कभी कटने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी उसको कम नहीं किया जाएगा। क्या बात कही जा रही है कि आपके लिए बे इंतहा सबर है। तो फरीजा नबूवत की अदायगी में जितनी ज्यादा तकलीफें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, दुश्मन से जो बातें आप सुन रहे हैं और दुश्मन जो आपके साथ सलूक कर रहे हैं और उस पर जो आप सबर कर रहे हैं, तो आपको इतना अजर मिलने वाला है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। तो गोया के रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो उनको तसल्ली दी जा रही है, उनको नसीहत की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आपको अगर अहले मक्का दीवाना कहते हैं ना तो आप गम ना करें, और आप तो दीवाने हैं भी नहीं, और दीवाना ही असल में सबसे ज्यादा फरजाना होता है ना। दुनिया ने सदा समझा दीवाना, दुनिया ने सदा समझा फरजाने को दीवाना, दीवाना हकीकत में जो सब में था फरजाना, फरजाना हकीकत में जो सब में था दीवाना। दूसरी बात, आप अपना अपना दिसासा जायजा लेते चले जाए कि अल्लाह के रास्ते में कोई आप पर किंकर मारे, आप अपने आप से पूछें कि मैं अल्लाह के रास्ते में जो मेहनत मुशक्कत करती हूं, मुझे कोई यही कह दे कि आप अदल नहीं करती तो आपका क्या हाल हो जाता है, मुझे कोई यही कह दे कि जो है बात तो करनी नहीं आती, और मुझे कोई यही कह दे कि घर की तो खबर लो जरा, मुझे कोई यही कह दे कि लो अब इस बुढ़ापे में संभला चला तो जाता नहीं और फिर जो है ना चली अल्लाह के दीन का काम करने, या फिर ये कि जो किसी तरह का भी कोई भी एक जुमला बोल दे बस उसी को लेके बैठ जाते हैं, और या फिर ये कि कोई हमारा फोन सुने, हमारे नाम को देखे और फिर फोन अटेंड ना करे, और या फिर ये कि हमारी कॉल का कोई जवाब ही ना दे, या फिर ये कि चलो फोन भी अटेंड कर लिया, कॉल का जवाब भी दिया, आए ना, दो तीन चार दफा कहा आए नहीं तो दोबारा नहीं दावा देते, और बहुत दिल बुरा कर लेते हैं। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अकलमंद हैं, आप दीवाने नहीं हैं, आपके लिए जो अजर है गैर मुनकते है, गैर मकतू है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अहले हक जो है, जो दावा करने वाले लोग हैं, दुनिया में उनको लोग पत्थर मारा ही करते हैं, उन पर कीचड़ उछाला ही करते हैं, उन पर बातें किया ही करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि घबरा कर परेशान होकर फिर वो काम करना छोड़ दें, वो अपना काम करते रहते हैं और अल्लाह ताला खुद ही जो है उनकी तरफ से काफी हो जाता है। वइन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। तो दो बातें कहने के बाद अब तीसरी बात आई। तो पहली बात क्या कि आप मजनू नहीं है, दूसरी बात ये कि आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अजर देने वाले हैं, दुनिया में हो सकता है नहीं मिले लेकिन आखिरत में मिलने वाला है, और फिर ये कि दुनिया में भी कम नहीं है, دنیا میں کیسے کم نہیں ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا ہی میں اجر ملا تو کیسا اجر تھا کہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود شریف اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، اہل ایمان سے بھی کہا کہ ان پر آپ درود بھیجئے، پھر اذان کے بعد اذان میں رسول اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے نا، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام، یہ کیا کیسا مقام ہے آپ کا، کیسا اللہ نے آپ کو کمال درجہ عطا کیا. پھر اذان کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں، دعا کے آخر میں کیا کہتے ہیں، آتی محمد ان الوسیلۃ والفضیلۃ ہے نا، اور وبسو مقام محدودہ وبسو مقام محمودہ من الذی وعدتا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو پورے گلوب پر اراؤنڈ دی کلاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چلتا رہتا ہے، کیونکہ دن اور رات کے اوقات کی تبدیلی، تو ایک جگہ فجر ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد کہیں اور فجر ہوتی ہے، پھر کہیں اور فجر ہوتی ہے، پھر مسلسل اذان جاری رہتی ہے، مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ دنیا ہی میں آپ کو اتنی عزت اور مقام دیا گیا. اور آپ دیکھیں ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، کتنی دولت تھی، کتنے امیر تھے، کتنے ان کے اولاد تھی، مال اولاد، لیکن آج تک کبھی کسی ایک نے بھی نام ابو لہب اور ابو جہل نہیں رکھا، لیکن دنیا رسول اللہ کا نام رکھتی ہے اور شوق سے اور محبت سے نام رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا، ان کی زندگی کا کافی بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا چیز تھی ان کے کردار کے اندر کہ اتنی تھوڑی قلیل مدت میں انہوں نے اس زمانے کی جو بڑی تعلیم اور تہذیب یافتہ قومیں تھیں، کیسرو کسرا کے لوگ، روم اور ایران کے لوگ، ان پر جو ہے آپ نے فتح حاصل کر لی اور ان کی تہذیبیں پاش پاش ہو گئیں، اور بدو عرب کے بدو جو تھے وہ کیسرو کسرا کے تخت و تاراج کے اس وقت مالک بن گئے جب وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے. تو کیا چیز تھی؟ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا، آپ کا صبر تھا، آپ کا اللہ سے تعلق تھا، اور دنیا نہیں، آپ کی نظر آخرت پہ تھی. تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں بھی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں آپ کو جو مقام دیا جانے والا ہے اور جو آپ کو اجر ملنے والا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ہیں لَعَلَى اوپر. اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر استعلاء اور غلبہ کے معنی ہیں، کہ آپ جو ہیں وہ اوپر ہیں. کس کے؟ خلقین، خلق اخلاق سے ہے نا خلق، اور عظیم بہت بڑے. اب پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو اخلاق کے اوپر ہیں. اخلاق پہلے ہی بہت اچھی چیز ہوتی ہے نا، پسند کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، تمنا ہے کہ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے، ایک حسرت ہے. تو آپ تو اخلاق کے اوپر ہیں. آپ کا کردار کیسا ہے؟ اخلاق سارے کو جمع کریں اس کے اوپر، اور پھر اتنا ہی نہیں عظیم بھی کہہ دیا. تو عظیم ویسے تو ہڈی کے لیے کہا جاتا ہے، عین زوئے میم، لیکن یہاں پہ یہ وسعت کے معنی میں آیا ہے، مزید وسعت کے لیے. اعلی اور عظیم نے اس میں وسعت اور حسن پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو ہے، اس کی گواہی کس نے دی؟ خود قرآن نے دی. آپ سوچیں کہ قرآن نے اس کی جو ہے وہ گواہی دی ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ بہترین کردار تھا، بہترین آپ کا اخلاق تھا. اچھا، اب یہ کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کانا خلقہ القرآن، خلقہ، اور آپ ٹھیک کر کے لکھیں، خلقہ بعض لوگ بولتے ہیں، خلقہ. یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے، گویا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا. اچھا، قرآن کیا ہے؟ قرآن میں پورا دین ہے، اسلام ہے. تو آپ کا خلق وہ تھا جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، دین اسلام میں حکم دیا ہے. या फिर इससे मुराद वो नरमी, वो इमानत, दयानत, शफकत, हिल्म, करम, इखलाक है कि आप नबुवत से पहले भी इसमें मुमताज थे। अरबों के यहाँ जो है वो इखलाक किसे कहा जाता था, जो शख्स जिसके अंदर हिकमत होती थी ना, कहते थे इसका इखलाक बड़ा अच्छा है। और हिकमत किसके बिलमुकाबिल है, जहालत के। फिर इफ्फत, पाकीजगी। तो आप जमाने जाहिलियत में भी जो थे वो बड़े इफ्फत थे, आप दोशीजा लड़कियों से, तंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्माने वाले थे, बाहया थे। फिर इसी तरह शुजात अरबों के यहां बड़ी मशहूर थी इखलाक के लिए, बहादुरी। अब ज्यादा जो थे वो बहादुर थे, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी की मिसाल कि एक दफा कहीं जोर से शोर की आवाज आई, आप उसी वक्त घोड़े पर सवार हुए और बाहर चक्कर लगा कर आए। जब आप वापस आए तो देखा कि सहाबा जा रहे हैं, सहाबा भी उठ रहे थे, आप होकर भी आ गए कि ये आवाज कैसी थी। तो जो अमीर और कायद होता है ना, बहादुर होता है, दलेर होता है, डडर होता है। और आपको याद है ना, एक दफा आप दरख्त के साए के नीचे आराम कर रहे थे, तो एक आदमी जो था वो गुजर रहा था और वो आया पास, और आपकी तलवार जो आपने दरख्त के साथ लटकाई हुई थी उसने उठा ली और कहने लगा कि अब आपको कौन मुझसे बचाएगा। तो आपने कहा कि अल्लाह, उस पर कब कभी तारी होगी, तलवार उसके हाथ से गिर गई, आपने तलवार उठाई और पूछा कि अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया और वो आपसे इतना मुतासिर हुआ कि फिर वो मुसलमान हो गया। इसी तरह आपके अंदर अदालत थी। अदालत क्या होती है, अदल करना। इसी तरह आप मेहमान नवाज थे। तो अहले मक्का जमाने जाहिलियत में भी जिन सिफात को बहुत उम्दा ख्याल करते थे, मकारम अखलाक का एक हिस्सा समझते थे, वो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर आपके अंदर आजी और इंकसारी पाई जाती थी, आजी और इंतसारी। हजरत अंस रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि आपके मकार में इखलाक का हाल ये था कि मदीना की कोई लौंडी या बांदी भी आपका हाथ पकड़कर जहां ले जाना चाहे आपको ले जा सकती थी। ये बुखारी की रवायत है। और हमारे यहां तो कहते हैं कि उसका तो इतना रोब है कि उसको तो देखते ही लोग कपकपाने लगते हैं, बात नहीं लोग कर सकते, वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म है, बात नहीं करता वो किसी से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लौंडी और बांदी भी पकड़कर जहां जरूरत होती थी आपको पकड़कर ले जाती थी और आप साथ चले जाते थे। अच्छा, किसी के भी इखलाक का पता करना हो तो कहां से पता चलेगा, घर वालों से या जिसके साथ वो वक्त गुजारता है। आपके इखलाक का पता आपकी क्लास फेलो से चलेगा, उस्ताद के इखलाक का पता उसके तालिबिलों से चलेगा, और शोहर का पता उसकी बीवी से, और बीवी का पता उसके शोहर से चलेगा, और बच्चों का पता उसके माँ बाप से चलेगा, और माँ बाप का पता उसके बच्चों से चलेगा। अच्छा, आपके बारे में आपने शायद शख्स अपने आप से सवाल करे, आपकी बेटी और बेटे को कोई भी पकड़ ले दोस्तों में से ही और कहे कि अच्छा बताएं कि अम्मी कैसी हैं, तो आपके आप और आपको कितना बुरा लगता है कि मेरे बारे में ये पूछा जा रहा है। और फिर ये कि फिर उस वक्त हाल क्या है कि पता नहीं बच्चे ने क्या क्या कह दिया, क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ, अरे बच्चे ने सारा कुछ कह दिया। फिर अब ये बच्चे ने तो सच बोला और हम बच्चे की शामत ले आते हैं कि तुमने ये क्यों कह दिया। कुछ अर्सा पहले की बात है, एक किसी के शोहर की लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, तो उसकी बीवी कहने लगी कि मुर्दे का हाल, कब्र का हाल मुर्दा जाने, और बीवी का हाल शोहर जाने, और शोहर का हाल बीवी जाने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना। और उसने ये कहा और मेरे तो जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि कितनी बड़ी बात है। वैसे एक आम सा मुहावरा है कि कब्र का हाल मुर्दा जाने, तो उस औरत ने कहा जिसके शोहर की तारीफ हो रही थी, वो कहने लगी कि कब्र का हाल जो है मुर्दा जाने और शोहर का हाल बीवी जाने। और मैं तो यूं भी कहती हूं कि शोहर को क्यों कहें, अपने आप को कहते हैं कि बीवी का हाल जो है वो शोहर जाने। तो बाज़ औक़ात इर्द गिर्द बहुत तारीफ होती है ना, लेकिन ये कि शोहर की गवाही कैसी है। बाज़ लोग अतात की और फरमाबरदारी की बहुत तारीफ करने लगते हैं, तो उसमें क्या है, बस आप यही कह सकते हैं कि आई ट्राई, मैं ऐसा कोशिश करती हूं और अल्लाह मुझे ऐसा ही बना दे जैसा कि आप समझती हैं। और फिर ये कि अल्लाह ताला घर वालों के दिलों में भी मोहब्बत प्यार डाल दे और बाकी अच्छी गवाहियां हों। لیکن حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا. جہاد فی سبیل اللہ میں کسی کو قتل کرنا جو ہے یا کفار کو مارنا یہ ثابت ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہے نا. اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نے نہ کسی خادم کو نہ کسی عورت کو کبھی مارا. اب مردوں کی مردانگی کیا ہے کہ عورتوں کو پیٹتے بھی ہیں، اور یہاں کی کورٹ میں اب کئی ایسے مقدمے اور کئی ایسے خلع اور طلاق کی باتیں ہیں کہ یہ مردوں نے عورتوں کو مارا ہے. اور کیا ہے کہ اب یہاں کے لوگوں میں یہ بات ہے کہ یہ جو پاکستانی یا انڈین یا یہاں کے لوگ ہیں نا ایشیا کے، وہ مرد جو ہے نا وہ بیویوں کو بہت مارتے ہیں، جو اس علاقے کے لوگ ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مردانگی نہیں ہے، عورت تو کمزور ہے. آپ نے تو حجت الوداع کے موقع پر آخری آپ کے جو خطبے اور آخری باتیں تھیں، جاتے جاتے جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ تمہاری عورتیں اور تمہارے غلام، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بہت اہم بات کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، میں نے اس پوری مدت میں جو کام میں نے کیا آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر میں تھے نا، یہ کن کے بیٹے تھے حضرت انس؟ ام سلیم کے رضی اللہ عنہ. کیونکہ کل جو لوگوں نے پیپر حل کیا ہے اس میں میں نے پیپر میں ایک سوال یہ بنایا تھا کہ اسار کی جو اللہ نے تعریف کی ہے، تو اس میں میں نے آگے 3 سوال لکھے تھے. ایک حضرت لکھا تھا ام سلیم، دوسرا لکھا تھا حضرت طلحہ، تیسرا انصار. تو تینوں جواب درست تھے. تو لوگوں نے کیا کیا، حضرت صرف ام سلیم، تو حضرت ام سلیم اور حضرت طلحہ کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ میاں بیوی تھے. تو جب بیوی پر آیتیں نازل ہوئی تو شوہر پر نہیں ہوئی تھی، تو شوہر کو تو رسول اللہ نے بتایا تھا حاضر حاضر آ کریں. اور صرف میں نے اس دن پھر آپ کو کئی واقعات سنائے تھے کہ انصار کی اسار پر آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ وہ آیتیں کیسی ہیں، ایک طرف مہاجرین کی تعریف دوسری طرف انصار کی تعریف. تو تینوں جواب درست ہے نا. اب لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو یہاں کے سٹیزن شپ میں جو ہوتے ہیں نا کوشچن آنسر، خوب نچوڑتے ہیں یہ، خوب آپ کتاب ایک لیکن وہ کہتے ہیں کہ یاد ٹک کریں بس. تو اب ڈیٹا سسٹم کے دن نہیں ہے، آپ کے دونوں پاروں کے پیپر اب ایسے ہی ہوں گے. خوب اچھی تیاری کر کے آئیں، تھوڑی دیر میں ہو لیکن نچوڑنا ہے اب آپ کو. اچھا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ٹک کرنے کے لیے، 5 منٹ میں بھی پیپر حل ہو جاتا ہے. زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، تیاری زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیچر کو بھی محنت کی ضرورت ہوگی پیپر بنانے کے لیے اور شاگرد کو بھی. اور مجھے تو یہ اور زیادہ اچھا لگا، میں نے کہا 3-4 قسم کے وہ ورین کسے کہتے ہیں، ورین ہے نا، تو وہ ڈفرینٹ وہ پیپر بنا لیتے ہیں اور اس پر انہوں نے وہ چڑھائی ہوئی ہے پلاسٹک شیٹ. اور پھر کیوں کہ ہمارے ہاں تو پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں نا ذرا ایسے بیٹھنا کہ نظر آتا رہے پیپر. سٹیزن شپ کا ٹیسٹ دینے جب جائیں تو کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھنا، ذرا دکھانا گتے کو ذرا ادھر رکھنا، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو پاس پاس بیٹھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو رشتے دار ہیں وہ قریب نہیں بیٹھے، اٹھ جائیں فیملی کے لوگ، دوسری طرف وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ دیتے ہیں، ایک ہی چیز پر ان کے پاس 5-4 پیپر تیار ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ کلر کی فائلیں ان کے فولڈر، اور ایک ایک کو ڈفرینٹ کر کے دیتے چلے جاتے ہیں. تو میں سوچ رہی ہوں آئندہ بیچ میں ویسے ہی کرنا ہے، لیکن ابھی 29 میں 30 پارے میں بھی کر لیتے ہیں. گو کہ آپ کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھے سمجھدار ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک ہی دفعہ محنت کی ضرورت ہوگی اور اس میں آپ بھی میری مدد کریں. تو تیار کر کے کسی کو نہیں پتا کس پر کیا پیپر آنے والا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ بیٹھ کر بھی کہ اتنا اچھا ہال، اتنی اچھی سیٹیں، اتنا اچھا سٹیج، تو سوچنا کیا چاہیے کہ اللہ میری کلاس کے لیے بھی مجھے ایسا کلاس روم دے دینا. یہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہماری مساجد میں اتنا ڈسپلن کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ اتنی صفائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہمیں بھی ایسا دے دینا. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ رخ پورا کا پورا رخ قلب سلیم، قلب منیب آخرت کی طرف ہونا چاہیے. کہیں بھی بیٹھ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل لیں. بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی. اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت ام سلیم کو جب رشتہ ملا تھا نا، اب بھیجا تھا حضرت ابو طلحہ نے رشتہ، तो उन्होंने कबूल नहीं किया था। उन्होंने कहा था मेरा छोटा बेटा है, जब तक ये जरा उठने बैठने के काबिल ना हो जाए, जरा बड़ा ना हो जाए, मैं रिश्ता नहीं करूंगी। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी कि आप इनको अपने पास रखें ताकि इनकी तालीम और तरबियत। और हजरत अंस रजी अल्लाह छोटे से थे जब रसूलुल्लाह के पास आ गए, तो छोटे से बच्चे, बच्चा बड़ा सच बोलता है ना, तो रसूलुल्लाह का इखलाक, किरदार, खलवत, जलवत सब हजरत अंस रजी अल्लाह ने अपनी इन आंखों से देखी। और वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास 10 साल रहा और आपकी खिदमत की, और मैंने जो काम भी किया आपने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। मैं खुद ही कहती हूँ कि ये ऑनलाइन जो क्लास हो रही है, आप इसको देखें, और आप में से कोई कंप्यूटर के पास आता है तो मुझे लगता है कि मैं मुतासिर हो रही हूँ और उस वक्त डिफरेंट कैफियत होने लगती है। या आप में से, मैं पढ़ा रही हूँ, आप में से कोई सवाल पूछ ले तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे रूटीन हट गई है ना। कल कल की बात है कि क्लास जब शुरू की तो बस दो तालिबे इल्म थे, जब क्लास शुरू हुई तो दो तालिबे इल्म थे। अब बुजुर्ग खाला जान, तो मैंने खाला जान से कहा कि खाला जान जब मैं अब शुरू कर रही हूँ क्लास, तो पंजाबी में कहते हैं हंगारा देना। हंगारा देना का मतलब होता है कि आप जी जी करते जाएं, पता चले कि हाँ कोई सुन रहा है। तो मैंने कहा कि खाला जान आपने ना रिस्पॉन्स देना है कि मैं जो है वो कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैं आपको पता है ये कहती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, बोलना नहीं है। अब मासूम खाला जान, मैंने लिखवाना शुरू किया तो वो कहें कि जी जी। अब मैं जो हूँ, मैं चाह रही हूँ कि खाला जान मत बोले, अब बस मुझे तो रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं आपको लिखता हुआ देखती हूँ तो मैं अगला अगला फिक्रा बोलती हूँ ना, कि ताकि मतलब मुझे, मैं इतनी स्पीड भी ना मेरी हो कि आप लिख ना सकें, और इतना आहिस्ता भी ना हूं कि भी वक्त जाया हो रहा हो। तो अब मैं खाला जान की तरफ देख रही हूँ कि खाला जान अब ऊंची ऊंची कह रही है कि जी जी। फिर तो ऐसे 5-6, बस मैं चुप चुप। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद खाला जान खुद ही खामोश हो गई, और मैं सोच रही थी कि कितनी प्यारी है ना, कितनी सादगी है ना, कितनी कितना हुसन है कि अताअत कर रही है टीचर की, लेकिन वो जो 2 साल वाली अताअत की बोलना नहीं है जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, तो जाहिर है कि जितना उनको समझ थी उसके मुताबिक वो ठीक कर रही थी। तो ऐसा होता है कि बूढ़ा है या बच्चा है तो बाज़ औक़ात वो आपकी बात को समझता नहीं है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आता था। और हम बच्चों पे कितना गुस्सा करते हैं, वो बच्ची छोटी से बर्तन धुलवाने शुरू किए तो पानी नीचे गिर गया, तो आप बर्तन धोने में मैं खुश नहीं हो रही थी, मैं नाराज हो रही थी कि पानी नीचे क्यों इतना गिरा ना, और साइडों में पानी चला गया और हर तरफ छींटे और ये वो। तो फिर उसके वालिद कहने लगे कि ये भी तो देखो कि छोटी सी बच्ची और बर्तन धो रही है, और फिर मतलब इस बात पे कि वो क्या कर रही है। तो बाज औकात हम बेशक उस तरह से गुस्से नहीं होते, लेकिन जैसे बच्चा तो इस बात पे खुश होना चाहता है कि मैंने ये काम किया मुझे शाबाश मिल जाए, और हम जो है वो नाराज होना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बच्चे हजरत अंस रजी अल्लाह की गवाही बड़ी खूबसूरत थी, कि कभी कुछ नहीं कहा और कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, और 10 साल खिदमत की। और कितने काम ऐसे होंगे जो रसूल अल्लाह की तबीयत के खिलाफ होंगे। अभी पिछले दिनों कोई कुरान की टीचर के लिए मुलाजमा ढूंढी जा रही थी, और बात ये हो रही थी कि उसको कुछ कहना ना पड़े, वो खुद से ही कहे बगैर बेहतरीन काम वो करे ना। तो अब आप देख लें कैसा तो नहीं होता, जो नौकर, मुलाजिम, गुलाम होता है बहुत गलतियां करता है। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है जो हजरत अंस रजी अल्लाह ने किया है कि आपने कभी ये बात नहीं कही थी। और वो खादिम भी थे, बच्चे भी थे, खादिम भी थे, तो हम अपने नौकरों मुलाजमों के साथ क्या सलूक करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं हम नाराज भी हो रहे होते हैं, और फिर साथ साथ कह रहे होते हैं कि इससे तो 100 दर्जे अच्छा है इन बच्चों को साइड पे करके मैं खुद सारे काम कर लूं, और मुलाजमा जो है इसको भी हटा दूं और खुद काम कर लूं। तो बात क्या है, वह इन नकल आला खुलुकिन अजीम, बेशक आप जो हैं वो आला दर्जे के इखलाक पर फाइज हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी किसी चीज का सवाल नहीं किया गया जिसके जवाब में आपने फरमाया हो नहीं। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है। तो एक तालिबे इल्म तो दूसरे तालिबे इल्म को नोट्स नहीं देना चाहता, नोट्स नहीं देना चाहता, लोग शेर नहीं देते कि मेरा शेर फिर पुराना हो जाएगा। और बाज़ औक़ात छोटी छोटी चीजें, जरूरत की, हमसाये से कोई लेने आ जाता है तो उसमें दिल तंग पड़ने लगता है। और बाज़ औक़ात लोग जैसे मशीनरी लेने आ जाते हैं, ग्राइंडर वगैरह, क्योंकि पहले जमाने में वो माचिस लोग मांगते थे, अब तो माचिस नहीं मांगते, क्या मांगते हैं कि अपना ब्लेंडर दे दें, जरा अपना ग्राइंडर दे दें, जरा अपनी इस्त्री दे दें, या मतलब ऐसी छोटी छोटी जरूरत की चीजें बाज़ औक़ात किसी की खराब भी हो जाती हैं। बाज लोग गंदा बहुत इस्तेमाल करते हैं, साफ नहीं करते उसको ना, और बाज लोग बहुत साफ सुथरा करते हैं, और जो है वो फिर तबीयत घबराने लगती है कि चीज दी है और अब जैसे अब जग खुल जाता है ब्लेंडर वाला, नीचे से भी खुल जाता है, आपको भी अंदाजा है इस बात का ना। तो अब बाज लोग उसकी जो है वो रबर भी और उसका ब्लेड भी और सब चीजें ढक्कन धो के सलीके से सुखा के बंद करते हैं, और बाज लोग उसका रबर भी खोलते भी नहीं है धोते वक्त, और जंग लग जाता है फिर उसके ब्लेड को। तो बाज का तबे नाजुक पे ये चीजें बड़ी गिरा गुजरती हैं। तो अमेरिका में कुछ साल रहने का इत्तफाक हुआ और हमारे कुछ हमसाये थे, तो अब वो जग चाहिए तो दे देती थी। बेचारों ने मुझसे महंगा भी खरीदा, थोड़े दिनों में उनका जल गया। मेरा था भी सस्ता सा, मतलब मुनासिब सा था, उन्होंने बहुत बड़ी मशीनरी वाली खरीदी। फिर पहले भी वो लेते थे, वो बाद में भी लेते थे। तो बाज़ का ऐसा होता है कि आप सारा दिन जैसे बाहर गए पढ़ा कर आए, आपकी एक रूटीन है, अब आके लेटे, अब उस वक्त बैल हुई है, तबे नाजुक पे कितना गिरा गुजरता है। देना मसला नहीं है आपकी, फिर आपकी तो पूरा टाइम टेबल मुतासर हो गया ना। तो होता क्या है कि तबीयत पर बहुत सी चीजें गिरा गुजरती हैं। तो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते थे, तो मैं और आप कहाँ पे खड़े हैं। अपना अपना मुहासबा करना, अपना अपना जायजा लेना, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिजान अमल में खुल्क हसन की बराबर किसी अमल का वजन नहीं होगा, और अल्लाह ताला गाली गलोच करने वाले बद जुबान से बुग्ध रखते हैं। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ने फरमाती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अपने हुस्ने कल की बदौलत उस शख्स का दर्जा हासिल कर लेता है जो हमेशा रात को इबादत में जागता और दिन भर रोजा रखता हो। यह अबू दाऊद की रवायत है। कुछ लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कुछ लोग इबादात में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन इखलाक बड़ा उनका उजड़ और अक्कड़ होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, और लोग उनको देखते ही जो है वो दिल बुरा करते हैं कि ऐसे कह दिया, ऐसे हो गया। और तो एक बात जो हमें यहाँ याद रखनी है, इससे पहली बात, अब हम इस बात को अब समेट लेते हैं, निचोड़ क्या है। नंबर एक कि आप इखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज हैं, इसीलिए तो आप हदायत का काम कर रहे हैं, लोगों को नेकी की तरफ बुला रहे हैं। जिसका अच्छा इखलाक ना हो वो अजियतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये है इसके मानी। क्योंकि एक कमजोर इखलाक का इंसान जो है जब दावा का काम करेगा और लोग उसको कहेंगे जा जा तू तो मजनू है, दीवानी है, पागल हो गई है, तो वो शख्स जो है क्या कहेगा, तू पागल होगा, तू दीवाना होगा, और उसको दो जुमले और सुनाएगा, अब वहीं से दावा का काम तो खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो कमजोर इखलाक वाला दावा नहीं कर सकता, लड़ाई जरूर कर सकता है। अच्छे इखलाक वाले का ये किरदार है कि वो करेगा दावा का काम। दूसरे इसके मानी ये हैं कि किसी का बुलंद इखलाक का होना इस बात का सबूत है कि वो शख्स जो है कैसा है, कि नेकी के काम में वो दीवानगी को पहुंचा हुआ है। क्योंकि दीवाना तो आमतौर पे वो शख्स होता है ना जिसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाए, लेकिन बद इखलाक वाले उसको कहते हैं कि वो दीवाना है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप इस तरह से दिन रात काम करते थे कि अहले मक्का तो आपको दीवाना कहते थे, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि आपका इखलाक जो है वो सबसे अच्छा है और बहुत अच्छा है। तो आमतौर पे हम इखलाक इसको समझते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई करवट वो सोया करते थे, और या फिर ये कि वो जो थे वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंच, छोटी छोटी बातों को, सुन्नतों को हम लेते हैं। तो सबसे बड़े इखलाक की सुन्नत आपकी क्या थी कि दावा का काम करना और फिर उसके अंदर जो है हुस्ने इखलाक पर कायम रहना। तो यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, आपके किरदार, आपकी नबूवत, आप पर जो कुरान नाजिल किया गया, इसके लिए अल्लाह ताला ने तीन बातें कही हैं और कसम खाई है कलम की और उस चीज की जो लिखी जा रही है। और तीन बातें क्या कही, नंबर एक, अल्लाह के फजल से आप मजनू नहीं हैं। नंबर दो, आप जो नबी हैं और जो दावा का काम कर रहे हैं और जो सब्र और शुक्र से आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका अजर कभी खत्म होने वाला नहीं है। और नंबर तीन, आप बेशक इखलाक के ऊंचे दर्जे पर जो है वो फाइज हैं, आप इखलाक के ऊंचे दर्जे पर जो है वो कायम हैं, बड़े मर्तबे पर हैं आप इखलाक के। और अपना भी हम मुहासबा करें, इससे अच्छी तारीफ क्या हो सकती होगी कि खुद अल्लाह ने कुरान में आपके लिए तारीफ के अल्फाज के, रहती दुनिया तक ये आपके इखलाक की गवाही है। और जो है वो कान तरस जाते हैं ये सुनने के लिए, और दिल मचलता है ये सुनने के लिए कि बच्चे हमारे बारे में अच्छी गवाही दें और शौहर हमारे बारे में अच्छी गवाही दें, और जिसका शौहर उस बीवी से राजी हो जाए वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ऐसा तुब सिरू व युब सिरून। अब जो अहले मक्का एतराजात किए करते थे तो अल्लाह ताला जो है साथ साथ उसका जवाब देते हैं, और आप देखें अल्फाज का चुनाव बड़ा जबरदस्त है। फसा तुब सिरू, बस अब तू भी देख लेगा, वायुब सिरून और वो भी देख लेंगे, क्या चीज वे ये कुमुल मफ्तून के तुम में से कौन जुनून में मुब्तिला है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब इस्लाम फैलेगा, जब हक वाजे हो जाएगा, सारे पर्दे हट उठ जाएंगे, उस वक्त पता चलेगा किसका इखलास अच्छा था। और आपको पता ही है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जिस इखलाक का मुजाहरा किया, तो अहले मक्का क्या करते थे, अपने झगड़ों को चुकाना हो तो आपको जो थे वो हाकिम मुकरर करते थे, जब इमानत रखने की बारी हो तो रसूल अल्लाह का चुनाव किया करते थे, और हजरे असमत को भी जो है वो लगाने की बारी आई तो अहले मक्का ने कहा कि बस हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अपना हाकिम मुकरर कर लेते हैं, अपना जज मुकरर कर लेते हैं, जैसे आप इस मामले का फैसला करेंगे हम उसको मानने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जल्दी पता चल जाएगा, पहले भी पता था, जो जो इस्लाम फैलेगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक का पता चलता जाएगा। और ये तो है दुनिया की बात, अब आखिरत में क्या है कि बाकी जो है कि आपका इखलाक कैसा था, तो जब कयामत आएगी तो जो आपको मर्तबा और मकाम मिलेगा और जो आपको दिया जाएगा लअजरन गैरा ममनून, तो उस वक्त पता चलेगा। तो ये जो है ना फसा तुब सिरू व युब सिरून, दुनिया भी मुराद है और फिर आखरत भी, तो फिर देखे जल्दी देखा जाएगा, तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे, बेअय्युकुमुल मफ्तून कि तुम में से कौन मजनू है। मफ्तून जो है ये मजनून ही के वजन पर है, तो फतन से है, और फतन के मानी क्या है कि जो जो आजमाइश में है, जो मजनू या दीवानगी की कैफियत में है। इन्ना रब्बा का हुआ आलमू, बेशक तेरा रब ज्यादा जानता है, बिमन उस शख्स को, यानी किसको, उस शख्स को, दल्ला जो भटक जाए, जो बहक जाए, अनसबील ही अपनी राह से, तो तुम्हारा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटके हुए हैं। और इससे मुराद है अहले मक्का जो शिर्क करते थे, और हर दौर के जो नाफरमान हैं, आज के दौर के भी शिर्क करने वाले। वह हुआ आलमु बिल मोहतदीन, और वो खूब जानता है, कौन जानता है, अल्लाह ताला, बिल मोहतदीन हदायत वालों को, और राह याफ्ता लोगों को भी अल्लाह खूब जानता है। फला तो ते इल मुकज्जिबीन, पस तू झुटलाने वालों की बात न मान। अब यहां पर कहा जा रहा है ऑर्डर के सीगे में, फला तो ते, बस आप अताप न कीजिए अल मुकज्जिबीन, मुकज्जिब वाहिद है और मुकज्जिबीन जो है ये जमा है, तो कहा यह जा रहा है कि आप जो हैं मुकज्जिबीन की अताप मत कीजिए। तो ये क्या अताप थी जो के करने से मना किया जा रहा है। असल में अहले मक्का ये चाहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग दीन का काम कर रहे हैं ना उसको छोड़ दें, और वो ये चाहते थे कि आप जो है ना कंप्रोमाइज करें, आप उनकी बातें जो है ना उसको माने। तो कहा जा रहा है कि आप जो हैं इनकी अताअत मत करें, इनकी तरफ आपने जो है झुकना नहीं है, इनका कहना नहीं माना। वदू, और वद जो है इसका रूट क्या है, वो दाल दाल, वदूद भी इसी से है, वदूद और मोहब्बत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो वदू वो चाहते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं, शद आई हुई है ना ऊपर, वो तो शदीद मोहब्बत करते हैं, किस चीज के लिए, लो तुदहिन फयुदहिनून, कि तुम भी मदानत करो तो ये भी मदानत करें, कि तुम जरा ढीले हो जाओ तो ये भी ढीले हो जाएं। और आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि दाल हा नून जो है इसका रूट है, और इसके मानी क्या है, इसके मानी होते हैं तेल के लिए कहा जाता है, तेल को क्या करते हैं, इधान का मानी है किसी चीज को तेल लगाकर नरम करना, जैसे ताले में जंग लग जाए तो आप क्या डालती हैं, तेल डालती हैं, तो चाबी आराम से जो है उसके अंदर दाखिल हो जाती है। अब जैसे मेरे शौहर सोए हुए हैं और आराम कर रहे हैं और बच्चे उठकर स्कूल जाना चाहते हैं, अब क्या होता है कि वॉशरूम का वो आहिस्ता से भी दरवाजा खोलते हैं, एक कैसी अजीब सी दरवाजा खोलने की आवाज आती है, घर के अंदर मुख्तलिफ दरवाजे खुलने की आवाज आती है। अब मैं चाहती हूँ आवाज उसकी ना आए, तो उसमें क्या किया मैंने, मैंने तेल डाल दिया, मैंने वो दरवाजे में जहां जहां वो लोहा लगा हुआ है ना जिसने दरवाजे को जोड़ा हुआ है, तो मैंने जब उसके साथ तेल जब जगह जगह लगा दिया तो फिर थोड़ी देर बाद ही देखा तो आवाज नहीं आ रही थी। तो इस तरह दरवाजे की वो खोलने बंद करने की जो एक आवाज थी वो बंद हो गई। तो किस तेल लगाना, तो मानी है तेल लगाकर उसको नरम कर देना, उर्दू में भी आप कहती हैं कि बटरिंग। अच्छा, तो अब आप बटरिंग कर रही हैं, ऐसे खुशामद करना है ना। तो बहरहाल ये जो इधान है इसका मतलब है जैसे आपस में मसालियत कर लेना, जो है वो मदाहनत कर लेना। तो अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अहले मक्का ये चाहते हैं कि लो तू धेनु, कि आप भी मदाहनत करें, कि तबलीग इस्लाम में ढीले पड़ जाएं, आप जो है वो शिर्क कर रहे हैं। वो कहते थे कि अच्छा कुछ नहीं तो हमारे बुतों को बुरा नहीं कहो, कुछ हमारी मानो कुछ हम आपकी मानते हैं। तो वो चाहते थे कि आप मुखालफत में कुछ नरमी कर लें। तो कहा जा रहा है कि वो तो ये चाहते हैं लो तू धेनु कि तुम भी मदाहनत करो, तुम ढीले पड़ जाओ, नरमी दिखाओ, फयूद हेनून, तो वो भी नरम पड़ेंगे, वो भी ढीले पड़ेंगे, फिर वो भी जो है वो आपके साथ मसालत करेंगे। उसके बाद जो है आप देखिए कि अल्लाह रबुल इज्जत जो है बड़े जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं, एक किरदार जो है ना उसको पेश करते हैं। अब यहां पे नाम लिए बगैर एक किरदार पेश किया गया है, और ये किरदार क्यों पेश किया गया है, ऐसा किरदार जो कि एक बुरे शख्स का किरदार है, जब उसका नाम भी ना लिया जाए ना और उसका जिक्र किया जाए तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना सबको पता चल जाता है कि ये किसकी बात हो रही है। तो इब्तदाई आयतों में आम अहले मक्का का जिक्र किया जा रहा है, अब यहां से जो है बगैर नाम लिए एक शख्स के किरदार को पेश किया जा रहा है, और ये जो किरदार था कहते हैं कि ये किरदार था वलीद बिन मुगीरा का, ये किरदार था वलीद बिन मुगीरा का, और इसमें जो है आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 13 तक, बल्कि आयत नंबर 14 तक जो है वो किरदार को अल्लाह ताला उसकी सिफात बताते हैं, और फिर आयत नंबर 15 और 16 में उसका अंजाम बताते हैं, और बताते हैं कि ऐसे लोगों का जो है पहले भी ऐसे लोग थे तो उनका क्या अंजाम हुआ। यहां पे आइए इस किरदार को हम देखते हैं, अल्लाह ताला ने जो उसूल बताया कि जो किरदार गुमराह किरदार है, जो झूठे का किरदार है वो कैसा है, साथ ही कहा वला तोते, और तू कहना न मान। तोते का रूट क्या है, तोए वो एन, और यहां पे फेल नहीं का सीगा है ऑर्डर के अंदाज में, और आप अतात ना कीजिए, कुल्ला हर हल्लाफिन हल्फ से है और कसम के लिए आता है, और यहां मुबालगे का सीगा है, और आप अतात ना कीजिए हर कसम खाने वाले की। तो ये है पहली सिफ्त उसकी, और हल्ला फाल का वजन है मुबालगे का, और बजाहिर एक किरदार है लेकिन कुल्ला भी कह दिया, तो मानी क्या है कि ये जो एक किरदार पेश किया जा रहा है ये एक नहीं है, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कसमें खाने वाले हैं। आप बात ना माने हर ऐसे शख्स की जो बहुत कसमें खाने वाला हो, और अब यहां पे क्यों कहा जा रहा है कि बहुत कसमें खाने वाले की बात ना मानी जाए। कसम इंसान कब खाता है, जब कोई बात का इतबार नहीं करता, और या फिर ये कि कोई शख्स होता है झूठा और उसको यकीन दिलाने के लिए जरूरत पड़ती है कि वो कसम खाए, और मुनाफिक कसमें खाता है कि बात बात पर कसम खाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो बात बात पर कसम खाए। तो बाज बच्चे कसमें खाते हैं, बाज औरतें कसमें खाती हैं, कसम को उन्होंने मामूली चीज समझ लिया है, और हलफ जो है और इसमें शद भी है मुबालगे का सीगा, तो मानिए है कि बहुत कसमें खाने वाला। हरगिज उसका कहना ना मानना। और बाज़ुकात इंसान अपने आप को जब समझते हैं ना कि मैं हार रहा हूं, और होता है वो झूठा और होता है वो मुनाफिक, तो फिर वो कस्में खाने शुरू कर देता है। तो कस्में खाना कोई अच्छी बात नहीं है, कस्में नहीं खानी चाहिए। तो बहुत कस्में खाना यहाँ पे इससे मना किया गया। नंबर दो, महीन। महीन जो है किसे कहते हैं, इसका रूट क्या है? हा व नून वाइजा खातबुल जाहिलूना कालू सलामा। और इससे पहले क्या आते हैं कि जो है वो लोग जो हैं जब जमीन पर चलते हैं तो कैसे चलते हैं कि नरम चाल चलते हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जो सिफात पसंद की हैं और अल्लाह को जो सिफात बहुत पसंद हैं वो कैसी सिफात हैं? हाँ, कि अलमोमिनु हय्यनुन वल्लय्यनुन, कि मोमिन नरम भी होता है और उसके साथ जो है वो मुनकसिरुल मिजाज होता है। इसके अलावा आप सूरत अल फुरकान को देख लीजिए, तो वहां पे ये लफ्ज आपने पढ़ा था और कई दफा आपने पढ़ा है। वहां आपने क्या पढ़ा था कि वा इबादुर रहमानी अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन, कि अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं। वा इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। तो ये हौन का लफ्ज जो है ये नरमी के लिए और आजी और झुकाव के लिए भी आता है, जिल्लत और रुसवाई के लिए भी आता है। इसी सूरत में, यानी ये जो मैंने आयत सूरत अल फुरकान की आपको अभी सुनाई आपके सामने, ये आयत 63 है। इसी सूरत में 69 में देखें कि जहन्नुम के अजाब के बारे में है कि वह खुलूद फी ही मुहाना, और वो जिल्लत ख्वारी के साथ हमेशा इसमें रहेगा। मुहाना वहां पर आया है। अब यहां पर क्या है कि महीन, तो महीन के मानी क्या है कि वो शख्स हकीर है, वो शख्स जलील है, वो शख्स घटिया है। तो ये जो बहुत कस्में खाने वाला है ना, दरअसल जब वो उसका कोई वजन नहीं होता ना, उसको नजर आता है कि मैं अब हार रहा हूं और मुझे सब घटिया समझ रहे हैं, और होता है वो घटिया है, तो फिर वो क्या करता है कि वो और कस्में खानी शुरू कर देता है। तो कहा जा रहा है उसकी दूसरी सिफ्त क्या है कि वो महीन है। तीसरी सिफ्त क्या है? हम्माज़िन, हामीमज़े। और इसी नाम पर सूरत भी है। कौन सी सूरत है? अलहुमज़ा। और हामीमज़े मस्दर है, इसके लफ्जी मानी होते हैं चुटकी लेना। बाज़ औक़ात बच्चा बहुत रोता है, आपको समझ नहीं आती कि बच्चा रोया क्यों, तो होता क्या है कि चुटकी वो लेता है। एक मेरी तालिबिल्म थी न्यूयॉर्क में, और वो कहती थी कि बच्चों को छेड़ना मुझे मेरा हॉबी है, और बच्चे जहीं कहीं भी देखती थी तो और अच्छे गालों वाला बच्चा और जरा सेहतमंद, तो कभी इधर चुटकी काट, कभी उधर चुटकी काटी, और बच्चे उससे भागते थे ना। और फिर जो है मैंने कहा था फिर आप पोती नवासी की भी जरा ऐसी चुटकियां लेना ना, फिर देखेंगे। तो बहरहाल बात क्या है कि चुटकी लेना, कुछ चुबो देना, तो उसको हम्ज कहते हैं। तो जब चुटकी ली जाती है तो होता क्या है कि वो शख्स जो है उसको कितनी तकलीफ होती है ना। तो इसी से ये लफ्ज जो है ऐब गोई करना, ताने देना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, शैतान जो है उसको हमजात कहा जाता है ना, तो हा मीम ज़े वो क्या करता है, वो भी जब आकर वसवसा डालता है तो सभी वो चुटकी लेता है। उधर वसवसा डाला, अच्छा भला दो दोस्त थे, अब उसने तो चुटकी भर ली, एक वसवसा डाला, अब उसके साथ ही चेहरे की रंगत बदलनी शुरू हुई। दूसरा तो उसे कहता है पता ही नहीं चला कि इसने चेहरे की इसकी रंगत क्यों बदल गई, अभी तो ये मुस्कुराकर मुझसे बात कर रही थी, अभी इसका मूड एकदम ऑफ हो गया। असल में उसको चुटकी ले ली किसने? शैतान ने। एकदम उसका रवैया तब्दील हो गया, लेकिन साथ वाले को पता नहीं चला, है ना। तो शैतान के लिए भी हम आजाद। तो इसी तरह हामिज जो है कहते हैं ऐब जुई करने वाला, और ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? हम्माज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है ऐब गोई करना, ताने देना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और बाज लोग जो हैं वो बहुत ताने देते हैं ना, तो हम्माज ये भी मुबालगे का सीगा है। चौथी उसकी सिफत है मशाइन। मशा जो है मीम शीन या से है, और जो है वो मशा जो होता है चलना, और इमशी ऑर्डर का सीगा है चल, और मशाइन मुबालगा है कि चलत फिरत करने वाला। अच्छा, ये मशाइन कौन होता है जो बहुत चलता फिरता है? एक तो आप भी आती हैं क्लास के लिए, एक जो चुगली करने वाला होता है ना, जो लगाई बुझाई करने वाला, और बी छक्को का किरदार, बी बानो, बी जमालो। तो चलो छक्को, जमालो, बानो, ये बी जमालो जो है इसका किरदार क्या है कि बुर्का जो है वो सर पर ऐसे उसको पीछे बस रखा हुआ है क्योंकि देर लगेगी अगर उसने आगे कर लिया या उसको सही से पहन लिया, और चप्पल पहनी हुई है, एक घर का दरवाजा नॉक किया, फिर वो दूसरे में गई, फिर तीसरे में गई, फिर चौथे में गई, फिर पांचवे में गई। तो हर खानदान के अंदर, हर घर के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, दोस्तों के अंदर एक बी जमालो होती है, इधर की उधर, उधर की इधर, और अल्लाह जाने उसको कहां से इतनी फुर्सत मिल जाती है कि फला ऐसे मुझे लग रहा था कि वो आपके बारे में शायद बात कर रहा था, क्योंकि जब मैं गई तो वो चुप कर गया और लग ये रहा था कि मेरे ही बारे में कर रहा था, हो सकता है उसके करने वाले के फरिश्तों को भी खबर ना हो, है ना। और वो इधर की उधर, तो वो क्या करते हैं, चलते फिरते बहुत है चुगली करने वाले ना, तो इसमें चलना फिरना एक था ना पांव का चलना, तो अब हमें चलने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन हमारे घरों में है तो फोन पर जबान चलती रहती है, हाथ चलते रहते हैं इशारों के साथ। तो मशाइन बहुत चलने वाला मुबालगा है, बिनमीम ये एक ही सिफत है, मशाइन बेनमीम। नमीम किसे कहते हैं, नून मीम मीम, नमीम वैसे मस्दर है, और चुगली खाना, चुगली खाना। और जो आपने पीछे मीम शीन या पढ़ा ना, तो मशअन ये भी मस्दर है, बहुत ज्यादा चलने वाला, मशअन और मशाइन बहुत ज्यादा चलने वाला, ताकीद भी है। तो बी नमीम, तो चुगली खाने वाला क्या है कि इधर की उधर लगाई बुझाई करने वाला। और आपने एक शख्स पर देखा था ना कब्र का अजाब हो रहा है, आपने दो वजह बताई थी, एक क्या थी, पेशाब जब करता था तो उसके छींटों से परहेज नहीं करता था, दूसरी वजह क्या थी, चुगलखोर था, चुगलियां बहुत करता था। तो वो लोग जो दोस्तों में चुगली के जरिए जुदाई डाल देते हैं, जो मियां बीवी में तलाक करवा देते हैं, जो दो लोगों की मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। और आपको पता है कि दो लोगों में दोस्ती करवाने के लिए तो झूठ बोलना भी जायज है कि नहीं वो आपकी तारीफ कर रहा था, उसके दिल में आपके लिए बहुत खैर है, वो आपकी बहुत इज्जत करता है, और कुजा ये कि लगाई बुझाई करके उनमें नाराजगी पैदा कर दी जाए। तो तादे मंदर तादे मस्जिद तादे जो कुछ टेंदा, पर किसे दा दिल न टाई रब दिला में चरेंदा। तो ये दिलों में नफरत पैदा कर देना, ये किरदार अल्लाह को सख्त नापसंद है और हराम है चुगली करना। तो हम सबको डरना चाहिए कि जबान की हिफाजत करते हैं कि नहीं। तो चुगली करने के लिए ना बहुत एक्टिवनेस दिखानी पड़ती है, कभी जबान बहुत चलानी पड़ती है, कभी पांव बहुत चलते हैं इधर उधर, तो आंखों से बाज लोग चुगली कर जाते हैं। अच्छा, पांचवी सिफत है मन्ना इल्लिल खैर। मन्ना जो है ये मीम नून ऐन से है और ये मस्दर है मीम नून ऐन, ये मुबालगे का सिगा है। अब क्या है कि बहुत ज्यादा मना करने वाला, किससे, लिल खैरी खैर से, खैर दो मानी में इस्तेमाल किया जाता है, खैर जो है नेकी को भी कहते हैं खैरात, और दूसरे इसके मानी है माल, क्योंकि अल्लाह ताला ने माल को भी जो है वो खैर कहा है कि अल्लाह के रास्ते में जब उसको खर्च किया जाए, तो नेकी के कामों से मना करता है, भलाई के कामों से रोकता है। मानी क्या है कि ऐसा शख्स एक तो बकील है, किसी को जरा सा भी एक पैनी भी नहीं देता, पैसा भी नहीं देता, और फिर दूसरे मानी क्या है कि नेकी के कामों में रुकावट डालता है। मन्ना इल्लिल खैर। छठी उसकी सिफत यह है मोतदिन। मोतदिन का रूट क्या है, ऐन दाल वो अदू दुश्मनी से है। अब यहां पे है मोतदिन, मोतदिन कि ये जो है अब मोतदिन आ गया, तो इसके मानी है कि बहुत ज्यादा हद से बढ़ने वाला। तो ये शख्स जो है कैसा है, मोतिद है, और हद से बढ़ना इसके मानी क्या है कि दुश्मनी में हद से बढ़ना, दुश्मनी में हद से बढ़ने वाला है। छठी सिफत है, सातवीं है असीम। असीम हाँ, नाकतुन आसिमा, ऐसी जो है वो ऊंटनी को कहा जाता है जो तेज चल सकती हो और फिर भी जो है वो आहिस्ता चले। तो असीम क्या है, जानबूझकर गुनाह करने वाला। तो अब इस शख्स की एक सिफत क्या है कि ये जो है वो गुनाहगार है, ये असीम है। तो गुनाह करने में हाल उसका क्या है, हद से बढ़ जाने वाला है। गुनाह करने में देखता भी नहीं कि नेकी के काम है, दुश्मनी का रवैया इख्तियार कर लेता है। क्या फरमाया, मन्ना इल्लिल खैरी मुतदिन असीम। फिर उसकी आठवीं सिफत है अतुल, अतुल, अतुल का रूट है ऐन तालाम। इसके मानी है सख्ती और दुरुस्तगी से किसी को उसके सर के बालों से पकड़कर खींचना और घसीटना। इसके लफ्जी मानी क्या है कि किसी को सख्ती के साथ उसके सर के बालों से पकड़ कर खींचा जाए और घसीटा जाए। अच्छा, अब आप देखें, किसी को अगर बाजू से पकड़ कर घसीटेंगे ना तो आपकी गिरफ्त में नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी को उसके सर के बालों से पकड़े के घसीटेंगे तो क्या होता है कि मुट्ठी में सर के बाल आप ले लें तो घिसटता चला जाता है, खींचता चला जाता है। तो इससे ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उजड़, खुरदरे, दुरुस्त खू शख्स के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो उतुल जो है कैसे शख्स को कहते हैं, जो शख्स जो है बहुत ज्यादा सख्त सख्त है, उजड़ है, बादाजाले का जनीम, और इसके बाद जनीम भी है, जानून नीम। ये बड़ा अहम लफ्ज है, और जानून नीम जो है ये कहते हैं कि असल में ये लफ्ज जनामतुन से निकला है, जैसे जन्नतुन लिखते हैं ना, इस तरह जनामतुन लिख लें, ये उससे निकला है। और जनामतुन उस गदूद को कहते हैं, जैसे होते नहीं, जैसे ग्लैंड होते हैं ना, उस गदूद को कहते हैं जो बकरियों की गर्दन में लटक आता है। और अच्छा, अब देखें कि आम हर बकरी की गर्दन में नहीं होता, कुछ बकरियां ऐसी होती हैं कि उनकी गर्दन में कुछ फालतू किस्म का गोश या खाल सी लटकने लगती है, तो इसकी हैसियत जिस्म में बिल्कुल एक फालतू उज्व की होती है। तो उतुल लिम्बाद अजाले का जमीन, उतुल सख्त दिल है, बेमुरवत है, इतना उसका दिल सख्त है कि लोग मर रहे हैं लेकिन एक पैसा खर्च नहीं करता। वो आप पढ़ी चुकी सूरत अल माउन, अरे तल्लाजी युकज्जिबु बिद्दीन फजालिकल्लजी यदुउल यतीम, है ना। तो यदुउल यतीम कौन है, गोया कि वो उतुल है, बहुत सख्त दिल है, यतीमों को पकड़ पकड़ कर धक्के दे के निकाल देता है। और इसके मानी क्या है कि इसके बाद वो जनीम है। तो जनीम के फिर मानी क्या सामने आए हमारे, कि बकरी की गर्दन में लटकने वाला फालतू गोश्त, खाल, उज्व, तो फालतू चीज को कहा जाता है ना, फालतू चीज। तो मानी ये हुए कि ये शख्स जो है ऐसा नहीं है कि जिस हसब और नसब का ये दावा करता है इसका वाकई वो हसब नसब है, बल्कि क्या है कि ये उस खानदान में है नहीं लेकिन उस खानदान में घुस आया है, फालतू है। समझ आ गई बात की। असल में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि या तो ये अखनस बिन शुरैक के मुतल्लिक है, असलन वो सकीफ में से था, क्योंकि अल्लाह ने नाम तो किसी का नहीं लिया ना। बात कहते हैं जैसे वलीद बिन मुगीरा, तो बात क्या कहते हैं अखनस बिन शुरैक, वो सकीफ में कबीले से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो दावा करता था कि वो जहरा कबीले से ताल्लुक रखता है। क्यों ऐसा कहता था, क्योंकि जहरा कबीला जो था, जहरा हाँ, उसका बड़ा एक रुतबा और मकाम था, तो वो कहता था सकीफ की बजाय मैं जहरा में से हूं। वलीद बिन मुगीरा के बारे मशहूर है कि वो कुरैश में से था नहीं, लेकिन वो ये दावा करता था कि मैं कुरैश में से हूं, क्योंकि वो अपने नसब को हकीर समझकर दूसरों के नसब में उसने घुसने की कोशिश की। और इसके बारे में कहते हैं कि वलीद बिन मुगीरा जो है कैसा था, मुनकते नसब, जिसका नसब का पता नहीं था, कटा हुआ था, उसके बाप का पता ही नहीं था। मुगीरा ने 18 साल की उम्र होने के बाद उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। तो वलीद बिन मुगीरा के बारे में बास कहते हैं ना ये आयात हैं, तो वलीद कौन था उसका पता ही नहीं था कि उसका बाप कौन है। जब वो 18 साल का हो गया तो मुगीरा ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जनीम कहते हैं हरामजादे को, हसब नसब को छुपाने वाला, वल्दु जिना। बाज लोग तो वैसे अपनी जात को छुपाते हैं ना कि छोटी जात है, और बाज जो है क्योंकि वो वल्दु जिना होते हैं, पता ही नहीं होता कि इनका बाप कौन था, तो वो भी किसी से जो है अपने आप को मनसूब कर लेते हैं कि फलां था इनका बाप ना। तो समझ आ गई अब इसकी जनीम की। आम तौर पे जब आप कुरान में इसको पढ़ेंगी तो इसका तर्जमा पढ़ेंगी कि गोया के वो बद असल था, بس اصل کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بعض وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ بدنام تھا، تو اس طرح مختلف ترجمہ جو ہے آپ پڑھیں گی، لیکن میں نے آپ کے سامنے اس کو اس طرح سے رکھا کہ آئندہ زندگی بھر آپ کو یہ لفظ نہ بھولے کہ بکری کے گلے میں جو ہے وہ جو کھال لٹک جاتی ہے، جو فالتو مال ہے اس کے لیے آتا ہے، تو اس طرح ہی وہ شخص جو ہے وہ ولد الزنا ہے یا بد اصل ہے یا پھر یہ کہ حسب نسب کو چھپانے والا ہے چھوٹی ذات سمجھ کر. بہرحال اتلن باد ذالک ذمیم، کیونکہ جو ولد الزنا ہوتے ہیں خاندانی نہیں ہوتے اور پھر ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا. اب اس کی دسویں صفت کیا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، اور یہ کہ یہ ساری جو صفات ہیں اس کے اندر کیوں پائی جاتی ہیں؟ یہ نو صفات جس کا ذکر آپ نے پڑھا آیت نمبر 10 سے، اس کی اصل وجہ یہ ہے جو یہ آیت نمبر 14 میں بتائی گئی ہے، ان کا نزا مال و بنین، اس لیے کہ اس بنا پر کہ وہ مال اور اولاد والا ہے، مال اس کے پاس بہت ہے اور بنین ابن کی جمع ہے بنین، کہ اس کے بیٹے بہت سے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ مال اور اولاد ہر دور میں انسان کے کردار کی برائی کا سبب بن جاتی ہے. کیوں؟ مال اور اولاد کی کثرت جو ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، امیر لوگ اور جن کے بیٹے ہوں، اور خاص طور پر یہاں پہ بنین بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر دور میں بیٹوں پر بہت فخر کیا جاتا ہے، اور بیٹیاں والے جو ہیں ان کو تو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، بیٹیوں والوں کو دھکے دیتے ہیں اور بیٹیاں والے مجبور ہوتے ہیں بےچارے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد والا اس کو بنایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شکر گزار ہوتا، تو شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے کیا کیا، یہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ بری صفات پیدا ہو گئی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اصل میں یہاں پہ ایک کردار پیش کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ولا تطیع کل حلاف مہین، تو معنی کیا کہ ہر ایسا شخص، اور مکہ کے جو سردار تھے نا ان میں سے بعض لوگوں کا ایسا ہی کردار تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اخنس بن شریق تھا اور بہت سے لوگ. تو ہر دور میں ایسا کردار ان لوگوں کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے جو امیر ہوتے ہیں اور جن کے پاس اولاد ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ اپنی بھونس جماتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے اور اولاد ہے. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ مال اور اولاد ہونے کی وجہ سے یہ مغرور ہو گیا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس کو سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، قالا کہتا ہے اساطیر الاولین، کہ یہ تو اگلے وقتوں کی سطریں ہیں. اساطیر الاولین تو یہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ اساطیر ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ قبول کرنے کی بجائے وہ جو ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اساطیر کہہ دیتا ہے، اور اول کی جمع ہے اولین. اور ایسا برا کردار والا ہے، کہتا ہے کہ پرانے زمانے کی، جیسے آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو پرانا ہے، اب جدید دور کے جدید تقاضے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پہ آقا نے، آج بھی وہ سچائی لوگوں سب سے بڑی سچائی ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ اسلام جو ہے ہر دور میں نیا ہی رہا، اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی. تو لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام، تو بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے، چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے. تو کون سے چراغ جلانے؟ اسلام کے چراغ جلانے ہیں. تو بہرحال ان ساری آیات میں ایک بد کردار، ایک امیر شخص، ایک مغرور شخص، ایک جو ہے وہ ذلیل اور رسوا شخص، اس کا کردار پیش کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو بہت سی صفات ہیں ایسی ہیں جو زبان کی حفاظت نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، حلاف، پھر حماز، مشائم بن امیم، منع للخیر، زیادہ تر تو منہ سے بول کر ہی منع کیا جاتا ہے نا. تو زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جو بھی مال اور اولاد ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، تو اس میں کبر اور غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے جو ہے وہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کبر اور غرور جو ہے وہ مال و دولت رکھنے والوں کو جو ہے وہ لے ڈوبے. اور مکہ کا کردار، مکہ کے سرداروں کا کردار ایسا ہی تھا. ये लोग कहते हैं कि पुराने वक्तों की कहानियां, तो पहले जमाने के लोग भी अपने नबियों को यही कहते थे ना कि जो आप दावत पेश कर रहे हैं पुराने जमाने की दावत है। सनसे महू अलल खुरतूम, अनकरीब हम दागेंगे उसको, अलल खुरतूम उसकी नाक पर। अब यहां पे जो है ये बात आप याद रखें कि साग आया है और अनकरीब गोया के जल्दी ही, और नून किसके लिए आया है, अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि हम जो है इसकी जो खुरतूम है उस पर दाग लगाएंगे। और खुरतूम जो है किसे कहते हैं, खुरतूम जो है नाक के लिए इस्तेमाल होता है, और नाक के लिए जो है अलिफ नून फा भी आया है अनफुन, अलिफ पर आ फिर सुकून दे दें है ना अनफुन। और अरब लोग क्या कहते थे, जो ऊंची नाक वाला होता था ना जिस बड़ी इज्जत वाला है उसको भी अरबी में अनफुन कहते हैं, और रगमुल अनफ कहते हैं नाक का खाक आलूद होना, कि किसी की इज्जत का जो है वो कम हो जाना। अच्छा यहाँ पे अनफुन की बजाय ये क्यों आ गया खुरतूम, तो असल में ये आम नाक को नहीं कहा जाता, हर नाक के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ऐसी नाक को कहते हैं जो हाथी की सूंड हो, यानी लंबी नाक वाला, और लंबी नाक जिसका अगला हिस्सा पंजे तक आता हो, और इन खरतमा नाक ऊंची करना और तकबर करना, और इसकी जमा है खरातीम, खरातीम मिल कौम, कौम के सरदार और मुतकबिर लोगों को भी कहते हैं। और ये जो लंबी नाक है ना ये खिंजीर की थोथनी जो है ना उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है खुरतूम का, खिंजीर और हाथी की थोथनी या नाक के लिए। और वलीद बिन मुगीरा के बारे में आता है कि इसकी नाक के ऊपर तलवार का जख्म आया था गजवाए बदर पे, और बाद में ये जो जख्म था फिर बकायदा इसके चेहरे पर नाक पर एक निशान पड़ गया था। और ये जो तलवार का जख्म आया था इसी से कहते हैं फिर इसको मौत आ गई थी, जैसे होता है ना कि बाज जख्म जो हैं वो अंदर ही अंदर जो है वो खराब होते रहते हैं, तो कहते हैं कि गजवाए बदर के मौके पर तलवार लगी, नाक पर जख्म आया, मुस्तकिल निशान बन गया, और इसकी नाक बहुत बड़ी नाक थी, और इसको खुरतूम फिर कहा जाता है। तो ये अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझता था, और अल्लाह ताला कहते हैं कि सनसिमहु हम अनकरीब दागेंगे। अच्छा ये लफ्ज भी आपने वैसे पहले पढ़ा हुआ है, इसका रूट है वो सीन नीम और विसाम, वो आला जिससे दागा जाए या रंगा जाए, विसाम भी कहते हैं और विस्मह भी कहते हैं। तो हम दागेंगे, हम निशान लगाएंगे, जैसे टैटू वगैरह नहीं बनाए जाते किसी चीज से, तो जिससे किसी पर नक्शो निगार किया जाए, निशान लगाए जाए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकरीब हम इसकी नाक पर निशान बनाएंगे, इसकी नाक को दाग देंगे। इसके मानी ये हैं कि अपने आप को बड़ी नाक वाला समझता है, लंबी नाक, इज्जत वाला, ऊंचा। अब नाक की जगह, अनफुन की जगह अल्लाह ने सूंड का लफ्ज इस्तेमाल किया, और दाग देने से मुराद है जलील करना। तो दुनिया में ही इसकी नाक पर क्या हुआ कि दाग लग गया तलवार का, तलवार का जख्म और फिर निशान। और आप देखिए चेहरे का निशान कितना भद्दा लगता है, कितना बुरा लगता है, औरतें बेचारी परेशान रहती हैं, जितना ज्यादा चेहरे को छेड़ती हैं उतने निशान पड़ते चले जाते हैं। चेहरे को छेड़ने से क्या मतलब है आप खूब समझते हैं। तो दाग लगाने से मुराद उसकी तजलील करना है, और आखिरत में भी क्या है कि हम इसकी खुरतूम जो है उस पर निशान लगाएंगे, गोया के इसकी जो नाक है इसकी नाक पर भी अजाब आएगा, गोया के खास तौर पर जो है अल्लाह ताला ने नाक का जिक्र जो है वो किया है। तो नाक को फुलाना, बाज़ का तो होता है ना हक बात आए तो लोग नाक को फुला कर साइड पर हो जाते हैं, और वैसे शादी करते वक्त भी सासे लंबी नाक वाली बहू ढूंढती हैं, तो बाज़ का तो वो लंबी नाक या ऊंची नाक जो है वो बड़ी हसीन बहू होती है, और वो हुसन ही जो है ना उस घर की एक आजमाइश बन जाती है। तो एक बात याद रखें कि लंबी और ऊंची नाक फायदा नहीं देगी, और जिसके अंदर ये कैफियत और जुनून पैदा हो जाए कि इसकी नाक बड़ी लंबी है और खूबसूरत है और मैं बड़ी खूबसूरत हूं, और फिर इज्जतदार समझना दौलत की बिना पर या बच्चों की बिना पर या हुसन की बिना पर, तो ये चीज इंसान को फिर ले डूबती है। तो कहा कि इसको जो है वो گویا کہ داغ لگایا جائے گا، اب کیسے اس کو سزا دی جائے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب یہاں پہ انجام جو ہے بتایا گیا، اور مفسرین نے ان آیات میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کون سے کردار تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ولید بن مغیرہ، کسی نے کہا اخنس بن شریق، کسی نے کہا اسود بن عبد یغوث، اور بعض لوگوں نے دوسرے بھی کہے، لیکن مکہ میں جو زیادہ مشہور تھا جیسے ولید بن مغیرہ یا اخنس بن شریق۔ تو بہرحال یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نافرمان ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ مجنو ہیں اور آپ کو، آپ یتیم ہیں اور اللہ کو آپ ہی مل گئے تھے نبی کے لیے، نبی بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع ہی میں ان کا جو ہے وہ محاسبہ کیا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور نام لیے بغیر جو کردار یہاں پہ پیش کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کردار سے جو ہے وہ ہٹائے اور بچائے۔